मन्ने त्वाम काल मीसा नम अनाद निधनम विभु। दुनिया जो कुछ मानना हो कृष्ण, तुमको जो कुछ भी माने, लेकिन मैं तो तुमको अंतर्जामी परम पुरुष मानती हूँ, साक्षात भगवान मानती हूँ। और ये भी मानते हो कि तुम सबके प्रति सम हो, भले तुम्हारे विषय में दुनिया कोई कहे कि कृष्ण ऐसे हैं ये है, लेकिन तुम दुर्योधन के प्रति, अर्जुन के प्रति या किसी के प्रति भी सम हो। हमने खूब अच्छी तरह से समझा है इस बात को, कुंती महारानी कह रहे श्री कृष्ण सम है, विषम हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ये भक्तों का धर्म है कि कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का अध्ययन करें। और भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं ही अपने बारे में प्रवचन किया है, और बहुत सरल भाषा है गीता की। श्रीमद् भागवत की भाषा तो थोड़ी क्लिष्ट भी है, गीता की भाषा बिल्कुल सरल है। थोड़ा भी जैसे संस्कृत का ज्ञान होगा, भगवान कृष्ण में श्रद्धा होगी, तुरंत समझ जाएगा। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परिवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबको जन्म देता हूँ और मैं सबको मेंटेन करता हूँ। प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस बात को मानकर जान करके विद्वान लोग मेरा भजन करते। कितना सरल वाक्य, इतना गीता का सरल वाक्य है, फिर भी लोगों के उपास देव नाना प्रकार के भरे पड़े हैं दुनिया में। हमारा पंथ ये है, हमारा पंथ वो है, हमारा ये है ये। अब भगवान क्या करे, कभी लोग कहते क्या करे, अब गीता को पीस करके घोल करके पिला दे आखिर बोलेंगे ही ना। इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भाव समन्विता। विद्वान लोग इस बात को जान करके मेरा भजन करते हैं और प्रेम से भजन करते हैं, भाव के साथ मुझे अपना सखा मान करके, मुझे अपना स्वामी मान करके, अपना प्रियतम मान करके, या माता पिता या पुत्र मान करके, भाव के साथ मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं, भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंत च रमंति च। मच्चित्ता, उन विद्वानों का, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, मेरे रूप गुण आदि में। मच्चिता मदगत प्राणा, उनकी इंद्रियां मुझ में रहती हैं, मेरी सेवा करते हैं, प्राण का अर्थ इंद्रियां। बोध अंत परस्परम, एक दूसरे को चेतना देते रहते हैं, मेरी बातें बताते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कथयम तश्च माम नित्यम, मेरा ही बखान करते हैं, मेरे बारे में ही बोलते रहते हैं। तुष्यंत च रमंत च, और यही उनका सुख है और यही उनका रमण है, मेरी कथा कहने में, मेरे कीर्तन करने में, मेरे श्रवण में वे मग्न रहते हैं। भगवान स्पष्ट बोल रहे, ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धि देता हूं जिसे मेरे पास आ जाते हैं। कोई कठिन नहीं है वास्तव में, गीता बहुत सरल है, पर गीता की व्याख्या कुछ लोगों ने बहुत कठिन कर दी। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य मिले तो वे कहने लगे, तुम छोटी उम्र में सन्यासी बन गए हो, तुमको वेदांत सुनना चाहिए। अरे कृष्ण कीर्तन आदि क्या करते हो, वेदांत सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बड़े स्नेह से कहे। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठ करके वे उनको वेदांत पढ़ाने लगे, मंदिर में कि घर में, घर में ले गए, हाँ घर में ले जा करके बड़े स्नेह से पढ़ाने लगे ब्रह्मसूत्र। तो वास्तव में वो ब्रह्मसूत्र भक्ति परक व्याख्या नहीं कर रहे थे, निर्विशेषवाद है, निराकारवाद कर रहे। चैतन्य महाप्रभु 7 दिन ऐसे हाथ जोड़ करके सुनते रहे और बोले नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मैं 7 दिन से तुमको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कुछ बोलोगे तब न पता चलेगा, बुझा कि न बुझा या बुझते न पारी। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो या नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे पूज्य, हे आचार्य, जब आप सूत्र बोलते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल झलमल करता है, दिखाई पड़ जाता है। मैं समझता हूँ सूत्र जब बोलते हैं, लेकिन जब व्याख्या करते हैं तो मूल अर्थ को ऐसे व्याख्या ढक देती है जैसे सूर्य को बादल ढक देता है। तो आप जब व्याख्या करते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, श्लोक समझ में आ रहा है तो और चकित हो गए, श्लोक समझ में आ रहा है और व्याख्या समझ में नहीं आ रही। हाँ, व्याख्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के कहने का आशय था कि आप गड़बड़ व्याख्या कर रहे हैं, आप गड़बड़ व्याख्या कर रहे हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तुम जरा व्याख्या करो, मैं सुनना चाहता। तो भगवान ने व्याख्या चालू किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण के सारे विशेषताओं को सूत्र से निकालने लगे, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला परिकार आदि उस सूत्रों में ही सब कुछ है। ब्रह्म सूत्र का भाष है श्रीमद् भागवतम, इस प्रकार से अर्थ किया उन्होंने तो चकित हो गए। और फिर आत्मा राम श्लोक की 18 व्याख्या किया चैतन्य महाप्रभु। वो व्याख्या सुन करके ही सार्वभौम भट्टाचार्य मान लिए कि यह कोई मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। उनसे प्रार्थना किए दर्शन देने के लिए, तो भगवान ने उनको षड्भुज रूप में दर्शन दिए। तो इस प्रकार गीता बिल्कुल सरल है, समझ में आने योग्य है, परंतु इसकी कुछ व्याख्याएं जो बहुत लोगों ने किया है वो इसके अर्थ को ढक दिए। व्याख्या पढ़ने समझ में नहीं आता है कि ये क्या अर्थ कर दिया। आप सुन करके दंग हो जाएंगे पढ़ करके। एक व्यक्ति ने टीका किया है गीता की, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, इस श्लोक पर व्याख्या क्या लिखता है कि जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं उनको समर्पण नहीं करना है। मामेकं का अर्थ ये है कि और कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसको समर्पण करना है। देखिए उस मूर्ख को, भगवान के देह में देह देही का भेद करने की आत्मा है देह है, ये गलत है। भगवान का तो स्वरूप है, उनमें देह और आत्मा का भेद नहीं, लेकिन इस तरह का वो अर्थ करता किया है। आज भी वो लिखा हुआ है कृष्ण को समर्पण नहीं करना है, कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसको समर्पण करना है। और एक बार प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इसको उद्धृत करके, तो कहते हैं यदि तुमको प्यास लगी है और तुम कहते हो कि मुझे पानी दीजिए मुझे पानी दीजिए, तो इसका कोई अर्थ निकाले कि तुम पानी लेकर के ऑस्ट्रेलिया में भेजो। पानी बेचारा मांग रहा है कि मैं मर रहा हूं मुझे पानी दो, तो कोई कहे नहीं वो पानी नहीं मांग रहा है, यह पानी मांगने वाला कोई दूसरा है वो मांग रहा है, इस प्रकार का कोई अर्थ कर है। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो, तो श्री कृष्ण के अलावा कौन दूसरा अर्थ हो सकता है? वे हो सकते हैं जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, जैसे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान नारायण, ये सब श्री कृष्ण ही हैं। तो वो तो अर्थ उतना तक लिया जा सकता है, लेकिन माम एकम शरणम का अर्थ ये नहीं है कि कोई गुरु कहे, जैसा फैशन चला है वो कहता है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम, हमने अपने आंख से सुना है गुरु ऐसे कह रहे थे कि तुम्हारा आज से सब कुछ गुरु का हो गया, सारा धर्म कर्तव्य जो है छोड़ करके गुरु की सेवा करो, तुम्हारा धन जो है सब गुरु का हो गया, सब कुछ गुरु का हो गया। तो हम पढ़ते थे कॉलेज में स्कूल में, तो हमने कहा कि हाँ वो चेला की स्त्री भी इनकी हो गई, ऐसे गुरु जी हैं, तुम्हारा सब कुछ हमारा हो गया, वाह रे वाह। ऐसे वो दीक्षा दे रहे थे, मैं भी बैठा था उसमें, निर्विशेषवादी मायावादी दीक्षा दे रहे थे, स्कूल बनाए थे। तो वहां पर विवाद कैसे चला कि मैं तो गीता प्रेस से भाई जी हनुमान प्रसाद पुद्दार से जुड़ा था, तो भगवान कृष्ण के प्रति सहज हमारी आस्था थी, ध्यान करने की बात आई तो मैं उस समय ध्यान करता था, भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए गीता प्रेस का चित्र है उसी को मैं देखता रहता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो जब दीक्षा लिया, और विद्यार्थी थे उनके साथ, मैं तो केवल टेस्ट के लिए दीक्षा नहीं लिया, तो गुरु जी कहते हैं ऐसे बैठ करके गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु का ध्यान, तो मैं कहा कि मतलब क्या ध्यान करना, तो दूसरा शिष्य बोलता है ये ध्यान करना चाहिए गुरु जी गेरुआ पहने हैं, खड़ाऊ पर चल रहे हैं, हाथ में कमंडल जलपत्र लिए हैं और ऐसे ओम ओम जपते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो जब हम लोग गए दूसरे घर में तो कहा कि गुरु का ध्यान क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए ये ध्यान। तो मैं कहा और वो सुरती खाकर खैनी खाकर के पच से थूकते हैं, उसका भी ध्यान करोगे ना। तो अब ये बात गुरु जी को जाकर कह दिया, ये ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है। तो गुरु जी कहते हैं वो अश्रद्धालु है, उससे बात मत करो। उनका बहुत अच्छा हुआ कि मैं अश्रद्धालु हो गया, अश्रद्धालु ध्यान। अरे ध्यान के विषय से हम सुंदर हैं, इनको देखना चाहिए, ये गौर निताई को। भगवान कृष्ण ध्यान के विषय, सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार। जीवन में दुखी व्यक्ति बिल्कुल सुखी हो जाएगा, रोने वाला हंसने लगेगा भगवान की छवि को, इसको ध्यान करो। ये नहीं कि ध्यान माने किसी कुत्ता का ध्यान करो या इसका ध्यान करो, कोई ध्यान का विषय है, भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तो भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी श्लोक आप लीजिए कुछ भी कठिन नहीं है।